मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, हालांकि पिछले सप्ताह के आखिरी दिन, जो मेरा अपना आखिरी दिन होता है, यानी कि शुक्रवार को, मैंने दो जहरीले मकड़ियों के बारे में बातें की थी और मैंने आप सबसे यह भी रिक्वेस्ट की थी कि इस पर आप सब विचार करें और अपने दिमाग के दो इन मकड़ियों को पहचान करके और इनसे मुक्ति पाने का हर संभव उपाय करें। मुझे विश्वास है कि आप सबने ऐसा किया भी होगा, लेकिन आज मैं इस विषय को आगे बढ़ाने नहीं जा रहा हूं। यदि जरूरी हुआ तो हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। आज मैं एक ऐसे शख्सियत को याद कर रहा हूं, आप सबके साथ याद कर रहा हूं, जो एक साल पहले आज ही के दिन हम सबसे जुदा हो गई थी। क्या आप याद कर पा रहे हैं? सोच करके देखिए, आपको याद आ जाएगा। और अगर न भी आए, अखबार अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वो नाम आपके जेहन में रच बस गया होगा। जी हां, लता मंगेशकर। एक साल पहले वो हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी, लेकिन उनकी जो सुरीली आवाजें हैं वो हम सबके दिल और दिमाग को अभी भी लगातार गुंजायमान कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पुण्य आत्मा, क्या आपको लगता है कि जो उनकी आवाज थी, उनकी आवाज में जो सुरीलापन, जो मिठास था, एक ऐसी आवाज जिसमें पूरे आवाम का दिल धड़कता था, क्या बिना पुण्य आत्मा के बाहर आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जब मैं सोचता हूं कि सही में कला की साधना कैसे की जाती है, तो फिलहाल तो मेरी अपनी जो सीमित जानकारी है, उस सीमित जानकारी के आधार पर मुझे लता मंगेशकर जी अपनी इकलौती मालूम पड़ती हैं इस क्षेत्र की, जिन्हें मैं साधना का एवरेस्ट कहना चाहूंगा। बिल्कुल इकलौती, सबसे शिखर पर मौजूद कला साधक। दोस्तों, कल भोपाल में उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम रखा गया था। डॉक्टर प्रीति और मैं दोनों उस कार्यक्रम में गए। उस कार्यक्रम का नाम था स्वर लता। लता जी ने जो क्लासिकल म्यूजिक पर बेस्ड फिल्मी गीत गाए हैं, उनकी प्रस्तुति थी। और खासकर मैं तो इस पर्पस से गया था कि कल मुझे लता जी पर कुछ कहना है। यह विषय मुझे मेरी पत्नी ने ही सुझाया था, तो मुझे लगा कि उस माहौल में अगर मैं कुछ देर तक रहूंगा तो कुछ ऐसे जज्बात अंदर पैदा हो सकेंगे, दिमाग में कुछ ऐसे विचार आ सकेंगे कि मैं आप लोगों के साथ एक नए तरीके से उन्हें साझा कर सकूं। यह सोचकर हम लोग वहां गए थे। चलिए, कार्यक्रम हुआ, अच्छा कार्यक्रम रहा। वहां जो मुझे एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण लगी वो ये कि जो गायिकाएं गा रही थीं, जो गायक गा रहे थे, उनके पीछे एक पर्दा लगा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक पर्दा, उसमें लता जी के चित्र उभर रहे थे। तो उसमें एक चित्र था, मतलब पूरी चित्रावली थी आप कह लीजिए, जिसमें लता जी जब बिल्कुल छोटी सी हैं उस समय से लेकर के, और लता जी के जीवन की जो पूरी यात्रा है, उनके अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे थे। तो जब मैंने उनके कम उम्र के चित्रों को देखा तो मेरे दिमाग में एक विचार कौन था, और वो विचार ये था कि जब लता जी इस धरती पर आई होंगी तो क्या किसी ने सोचा होगा कि यह छोटी सी बच्ची एक दिन भारत की रत्न बनेगी? किसने सोचा होगा? इसके बाद क्रमशः बढ़ते हुए जब हम देखते हैं, तब भी ऐसा नहीं लगता कि यह बच्ची कुछ ऐसा कमाल कर जाएगी। इसके बाद मेरे दिमाग में एक वाक्य आया जो अंधा युग में मैंने पढ़ा था, जो धर्मवीर भारती का लिखा हुआ गीति नाट्य है। अंधा युग मेरा बहुत ही प्रिय गीति काव्य है। वो उसमें कृष्ण कहते हैं कि भाग्य नहीं है पूर्व निर्धारित, उसे हर क्षण मनुष्य बनाता मिटाता है। सच पूछे तो लता जी के बचपन के उन चित्रों को देखकर मुझे यही वाक्य याद आया। क्या लता जी का भाग्य पूर्व निर्धारित था? अगर पूर्व निर्धारित था तो उसी समय ये घोषणा की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, नहीं किया जा सका। तो लता जी ने जो कुछ भी हासिल किया, अपनी साधना से हासिल किया, हर क्षण उन्होंने बनाने की कोशिश की, हर क्षण को जीने की कोशिश की और उनका जो अपना जीवन है दोस्तों, सच पूछे तो किसी तपस्वी के जीवन से कम नहीं है। हर क्षेत्र में तपस्या आपको मिलेगी, निजी जीवन तक के क्षेत्र में तपस्या, प्रेम तक के क्षेत्र में तपस्या। इसीलिए जब आज सुबह मैं सो करके उठा तो लता जी मेरे दिमाग में घूम रही थी तो प्रेम के बारे में एक वाक्य मेरे दिमाग में कौंधा कि प्रेम महज एक भ्रम है। यदि वो भ्रम अंत तक बना रहता है तो प्रेम बना रहता है, और यदि वो भ्रम टूट गया तो शायद प्रेम भी टूट जाता है। निश्चित तौर पर जब हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो खासकर लता जी के प्रेम को देख करके अफसोस होता है, दुख होता है, लेकिन कभी कभी यह भी लगता है कि शायद उनका जो प्रेम पूरा नहीं हो पाया, यानी कि प्रेम का जो भ्रम बना रहा, उसने ही शायद उनके आवाज को प्रेम की इतनी चाशनी में डुबो दिया। वो मानवता के प्रेम में तब्दील हो गया, वो जीवन के प्रेम में तब्दील हो गया। और जब कोई भी चीज प्रेम के इस रूप में तब्दील हो जाती है तो वो अलौकिक रूप ले लेती है। क्या आपको नहीं लगता कि लता जी की आवाज में वो अलौकिकता है? क्या आपको उनके चेहरे को देखने के बाद नहीं लगता कि उनके चेहरे पर वो अलौकिक प्रकाश है? और सच पूछे तो कभी कभी तो मुझे यह भी लगना लगा है कि क्या सच में उनके नाम में ही अपने आप में अलौकिकता की ध्वनियां धड़कती नहीं है? ऐसी आत्माएं कभी कभी इस धरती पर आती हैं। लता जी को एक बार फिर आप सभी की ओर से, अपनी ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से मैं प्रणाम करता हूं। नमस्कार।